ज्ञानपि सर्वैकी अतिमत्तचरित्राय स्वार्षितानां च पालिने जीवदुःखे नाम प्रेम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च वैष्णवभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय नाम्ने गौरत्यसे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय तवैवास्मि गुरु गौरांग की कृपा से आज परिक्रमा चतुर्थ दिवस सुस्त रूप से अच्छी तरह से संपादित हुई है। आकाश परिष्कार होने पर भी यात्रियों को कोई कष्ट नहीं हुआ, वर्षा भी नहीं हुई,
कड़ी धूप भी नहीं।
बहुत अब तक बहुत सुंदर रूप से सब कुछ चल रहा है। बृहद भागवतामृत के अनुसार गोप कुमार जी आसाम में राजस्थान कामाख्या देवी से यात्रा आरंभ करते हैं। धन के लोभ से कोई ब्राह्मण कामाख्या देवी की कामाख्या काम को पूर्ण करने वाली इच्छा को पूर्ण करने वाली और उनकी आराधना किया और आराधना करने से उन्होंने उसको गोपाल मंत्र दे दिया। कामाख्या देवी यद्यपि सबको नहीं देंगी किंतु उनको जानती थी यह भक्ति पढ़ाए इसलिए उसको मंत्र दिया। वो मंत्र की इच्छा से मंत्र करने की इच्छा से उसकी धन की अभिलाषा इत्यादि सभी समाप्त हो गई। निष्कपट से रूप से कोई भजन करे कृष्ण नाम करे उसको विशेष से वैराग्य न हो और तत्व का ज्ञान न हो यह असंभव जरूर होगा। और यदि विष्णु से उसको वैराग्य नहीं हो रहा है तो समझो भजन में त्रुटि है, कमी है। तो वहां से चलते चलते सागर द्वीप में पहुंचा जहां पर मेला होता है सागर का। लाखों लोग आते हैं और दान करते हैं। वहां उनको प्रणाम करके और वहां से निकला तो गया में पहुंचा। गया में
कर्मनाशा नदी
बॉर्डर पर काशी और गया के बीच में स्नान करके कर्मों को धो दिया। सब कर्म खत्म हो गए। काशी में आया ज्ञान अब रहा। जब पहुंचा तो शंकर जी ने कहा
हम आख्या देवी और शंकर जी, जल्दी यहाँ मत रहो, यहाँ से भागो, यहाँ से चले जाओ वृंदावन मथुरा। तो वो ज्ञान कांड से बच गया, निर्विशेष ब्रह्मवादी नहीं बन सका और वहां से चला प्रयाग में पहुंचा। गंगा जमुना सरस्वती की धारा जहां पर मिलती है वहां पर पहुंचे, वहां पर स्नान करके बेनी माधव का दर्शन किया। किंतु गोपाल मंत्र जपने से वो संतुष्ट नहीं हुआ। वहां वैकुंठ भूमि है, विशेष करके रामानुजाचार्यों की वो भूमि है, कुंभ का मेला भी लगता है, इसलिए बेनी माधव जी की कृपा से वो मथुरा सीधा पहुंचे। विश्राम घाट में स्नान किया, कर्म ज्ञान सबको
विश्राम दे दिया,
यातन की वैकुंठीय भक्ति ऐश्वर्यमयी भक्ति को भी
विश्राम दे दिया
और तब वहां से गोकुल पहुंचा। गोकुल में कृष्णचंद्र जी का जन्म है, रावण में पासरी में राधा जी का जन्म स्थान है। गोकुल में गया, वहां पर प्रणाम करके वो बरसाना नंदगांव और फिर वृंदावन में रासस्थली में है। रासस्थली है वहां, किंतु वहां पर सब प्रकार की गोपियां उसमें प्रवेश पाती हैं। इसलिए राधा जी को मान हुआ, वहां मान करके छोड़ करके चली। इसलिए गोवर्धन में रासस्थली है चंद्र सरोवर, यहाँ पर चंद्र करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मा के एक दिन तक खड़े होकर के रासस्थली का दर्शन किया और फिर वहां से राधा कुंड में आया, श्याम कुंड में आया। इस तरह से राधा कुंड की इतनी महिमा है कि इसकी स्वयं कृष्ण भी राधा कुंड में स्नान करते हैं, तीन तीन बार स्नान करते हैं, राधा जी का मंत्र जपते हैं कि आप प्रसन्न हो। मध्यान्हिक लीला का स्थान है, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी इत्यादि ने राधा कुंड को राधा जी का स्वरूप बतलाया है। तो आज आप लोग मथुरा में नवदीप धाम में गुप्त वृंदावन में, ये गुप्त वृंदावन है, आज का सौभाग्य है कि आप लोग ऐसे राधा कुंड और श्याम कुंड को नवदीप धाम में ही दर्शन किया। आप लोगों का सब अनर्थ दूर हो और एकांत की राधा जी के दास्य भाव आप लोगों को हो, ये कृष्ण भी कृपा करें और विश्वभानु नंदिनी भी कृपा करें। इसलिए राधा कुंड से पढ़कर और कोई स्थान नहीं है। बरसाना है, किंतु बरसाना या नंदगांव या और जावटी के स्थान है, किंतु प्रेम सरोवर भी है जहां पर कि मदनक्ष भाव प्रकाशित हुआ थोड़े समय के, और राधा कुंड में सब समय ऐसा ही भाव रहता है। जावट है किंतु जावट से भी राधा कुंड में श्याम कुंड मिलने के लिए राधिका जी सहेलियों के साथ में आती हैं, इसलिए राधा कुंड की इतनी महिमा है। आप लोग शब्द ब्रह्म के माध्यम से श्री राधा कुंड में है और नवदीप धाम में है, ब्रज के राधा कुंड में है। एक बात और, कीर्तन में इसने कीर्तन किया, हरे कृष्ण ने बहुत ही अच्छा कीर्तन किया। वहाँ पर राधा कुंड में हीरे जवाहर मणि माणिक्य से वो सब स्थान पर दे हुए हैं। एक बार अकबर बादशाह आया वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास में, उसने निवेदन किया, महाराज आप कहें मैं वृंदावन की कोई सेवा करूं। तुम क्या सेवा करोगे? नहीं, मैं भारत का सम्राट हूं, निराश मत मुझे कीजिए, कोई सेवा हमको दीजिए। तुमने अच्छा जाओ, यहाँ पर जमुना जी का ये घाट जहाँ पर रहते थे कदम बटे मदन थे
दादा
साहब चटीला के पास, वो घाट थोड़ा सा टूट गया है, उसको बनवा, बस यही जाओ तो सही। और गया देखा ये हीरे मणि माणिक, उसके राज्य को सब बिक्री कर देने पर भी उसका एक जो उसका कणा भी नहीं होगा, देख करके चकित हो गया और उनके चरणों में भी गए, जैसे हो सौभाग्य था दर्शन। इसलिए वृंदावन में, राधा कुंड में और सब जगहों में कृष्ण की जो क्रीड़ा की लीला स्थलियां हैं, वो सब विद्रुत मणि माणिक्य के द्वारा सिद्ध। वृंदावन में यद्यपि ऐश्वर्य भूमि नहीं है, माधवर्य भूमि है, वहां के पुष्प जो हैं वो सब कुछ दे सकते हैं, किंतु गोपियां केवल अपने पैरों में पहनती हैं, सब कुछ होने पर मूंगा देखा है ना, ब्रज का आभूषण वो धारण करती हैं, ये मणि माणिक्य और ये सब चीजें धारण नहीं करती,
गुंजामाला।
कृष्ण भी ऐसे ही वन के फूलों की पंच फूलों से या सप्त फूलों से रची हुई वन माला पहनते हैं, वो मणि माणिक्य का हार और ये सब नहीं, ये सब वैकुंठीय चीजें हैं। तो ऐसे राधा कुंड की, श्याम कुंड की, वृंदावन की, गुप्त वृंदावन की महिमा है। इसलिए आप लोगों का परम सौभाग्य है कि किसी प्रकार से भगवान के भजन में अनुरक्त हुए हैं और ये भी स्थिर कर लिया है राधा दास से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, ये भी स्थिर किया। अब गंतव्य स्थली उपदेशामृत से आरंभ करो, मन वेग क्रोध वेग जीवा वेग उदर वेग प्रत्याहार प्रयास उत्साह निश्चय, दूसरे वैष्णव को सम्मान दो, किसी का असम्मान मत करो। कृष्ण नाम में मन नहीं लगता है तो भी बार बार करो, और अंत में सब उपदेशों का सार है तन नाम रूप चरिता सुकृत नानुक्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुदारी जनानुदारी कालम नएत इखलान इत्युपदेश। सब वैष्णव मिल जाए, रसिक वैष्णव, तत्व रसिक वैष्णव ब्रजवास उसके अनुगत्य में ब्रजन नंदन श्याम सुंदर से राधाकांत से बढ़कर कर कोई उपास्य नहीं। वृंदावन स्वयं बलदेव प्रभु जी हैं, कृष्ण से अभिन्न है, गोपियों की उपासना जो है इससे बढ़कर के और कोई उपासना नहीं है। इसलिए गोपियों की उपासना की भांति चेष्टा करो और इस तरह से गुरु वैष्णव के आनुगत्य में भजन करो और आप लोगों का भजन सिद्ध हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। वंशा कल्प
दामोदर महाराज,
दामोदर महाराज
So Guru Maharaj is tonight speaking a little bit of the teaching from Sri Sanatana Goswami, Brihat Bhagavatamrita. There in Assam, in one place called Jogispur, one Brahman had taken a vow to please Kamakya Devi. He had some greed for wealth, therefore he went. He was performing austerities to please her. But Kamakya Devi did not cheat him in the ordinary way by giving material enjoyment. Instead, she could see that he was inclined towards devotion. Therefore, she gave him the Gopal Mantra. So even though he had a desire for greed, by chanting with Gopal Mantra, he became purified from the desire for wealth. Therefore, by chanting mantra, there must come vairagya, detachment, and also tapajan, knowledge of Krishna and bhakti. If we are chanting our mantras but no renunciation or no knowledge of Krishna is appearing in our heart, it must be that our practice is weak and there is some hole in our practice. Therefore, by chanting the mantra, his desire for greed left him, and leaving that place, he came to Gangasagar. Gangasagar, there is a big mala there. So there, after leaving there, there is one river there called Karanasi, which is between present-day Bodh Gaya and Varanasi. By bathing in that river, Karanasi, all his karma, his desire for fruited activity was destroyed. And then by going to Varanasi, he got the mercy of again Mahadev and Kamakya Devi. Therefore his desire for Gyan was completely destroyed. Kamakya Devi appeared in his dream and said, you should leave this Varanasi, don't come here, run away, run away. You should go to Vrindavan. So both his propensities for fruitive activity and mundane monistic knowledge was destroyed. On the way to Vrindavan, he came to Prayag, which is the confluence of the Ganga, Yamuna, and Saraswati rivers. There he saw the presiding deity of Prayag, Veni Mata. But because of the influence of his Gopal mantra, he had darshan, but was not completely satisfied. Therefore, by the mercy of Veni Mata, he continued and came to Mathura. There he took bath at Vishram Ghat. By taking bath in Vishram Ghat, one receives Vishram, one receives rest from the tendency to perform karma and jnana. Therefore, completely purified by these lower tendencies by the Yamuna, he finally entered Vrindavan and came to first Gokul, the birthplace of Krishna. Then he came to Raval, which is the birthplace of Srimati Radhika. He toured all the main holy places of Vrindavan, like Bhashana and Nandagaon. But finally, he came to Vrindavan at the place of Rasa Stali, the performance of Krishna's Rasa dance with the gopis. There in Rasa Stali in Vrindavan, there is Panchayati Rasa, where all types of gopis may enter. Therefore, Radharani was not completely satisfied there. Therefore, she displayed her man and left that place. So leaving Vrindavan Rasa Stali, he finally came to Govardhan at the Chandra Sarova. There is a place of Radharani's Rasa Lila. There, seeing the beauty of that pastime, the moon became stunned. And for one day of Brahma, the moon remained fixed in that position, watching the dancing of Krishna and the gopis. But finally, he left Chandra Sarova and came to Siradhakund and Shankund. How much fortunate we are to come to this Navadvip Dham. There in Brihad Bhagavatamrita describes the glory of Radhakund. Radhakund is so great that even Krishna himself, three times daily takes bath there and chants his Radha mantra with the intention that Radha may be pleased. Therefore, the glories of Radha Kunda are so great. Therefore, our acharyas, especially Sri Rupa Goswamipad, have said that Radha Kunda is not Nipun and Radhika, is Radharani Sarup herself. Therefore, this Navadvip is Gupta Vrindavan. And how much fortunate we are today to come to that same Radha Kunda, of whom all the Shastras speak the glories. By going there today, Gurudev says, I know that all our Anathas must have been finished, and our desire to perform Ekanishtha one-pointed service to Radharani must have arisen. By going there, we must have attained Radha and Krishna's mercy. Therefore, there is no place greater than Radha Kunda. And even though the Shastra describes the glories of other places, like Yava and Prem Sarova, still we think, compared to Radha Kunda, they are not equal. In Prem Sarova, Radharani displayed her Madanakya Mahabhava, separation in even though being with Krishna. But for how much time she manifested that mood? Just a short time only. But in Radha Kunda, that mood of Madanakya Mahabhava is present always. Then one may say, but Yavat is such a great place, but there Radha and Krishna cannot meet easily. But in Radha Kunda, Radha and Krishna meet without any type of disturbance. Therefore, we should try to realize these things by hearing Sadhavaman, transcendental sounds in the mouth of a liberated Vaishnava. By hearing this Sadhavaman, we can realize something. Our Pujapat Hare Krishna Guru sang a very wonderful kirtan describing of Thakur Bhaktivinoda, describing the real Sarupa of Radha Kunda. It is made of Chintamani Moy, wish fulfilling jewels, transcendental jewels. One time, Akbar, who was king of India, he came to Vrindavan and he met with Sri Sanatana Goswami Pad. Akbar begged to Sri Sanatana Goswami, may I do some seva? So Sanatana Goswami was thinking, what seva can you do in Vrindavan? So he said, yes, down there by the bank of the Yamuna, there is one ghat, the water stila, where Sanatana Goswami would stay. On the bottom of one of those stairs, one piece had been broken from the corner. So Sanatana Goswami said, you may fix that. And by the mercy of Sri Sanatana Goswami, Akbar, he had some darshan of the real Sarupa of Vrindavan. What did he see? Everything was made of divinely beautiful jewels. Akbar thought, even if I sell all the wealth of my entire kingdom, I cannot purchase one speck of dust of Vrindavan, or to speak of repairing a whole ghat. Therefore, no matter who he was, still he was so fortunate to see Vrindavan. Vrindavan is not Aishwarya Bhumi. It is not the land of opulence. It is the land of sweetness. But the opulence of Vrindavan has taken a very attractive and sweet form. For example, Krishna himself, he does not wear jewels or gold ornaments like in Vaikuntha. Instead, he wears a very simple, enchanting Vajanti Mala made of five different types of flowers. And the gopis take those very precious jewels and put them as their toe rings. And instead they wear the very sweet decorations like gunja berries. Therefore, Vrindavan is Madhurya Moy Bhumi. So anyway, we are very much fortunate to come today to this Vrindavan, the highest of all places, and especially Radha Kunda. There is nothing higher than Radha Dasya. There is nothing higher than the mood of the gopis and the service to the gopis. Therefore, we should make this our udesya, our goal. But we should start from the beginning of Sri Rupa Goswami's Upadesha Amrita. Vata Vegam, Manasakura Vegam, Jiva Vegam, Guru Pasha Vegam. We have to control all the urges of our body and mind, anger, the belly and genitals. We'll have to maintain qualities like forbearance, enthusiasm, patience. We'll have to avoid things which are unfavorable for bhajan. Therefore, beginning from the beginning of Upadesha Amrita, we should come to the essence of all advice, Tadnapa Rupa Charatavi Sukhitananu Smityo Prameta Rasamaya Manuji Vinayojam Tisam Rajeta Anuragi Dhananugami Kalan Nayat Akira Kuti Upadesha Saram. Therefore, Sri Rupa Goswami has said, the essence of all advice is in Vrindavan, under the guidance of a Rasi and self-realized Vaishnava. One should constantly remember and chant the name, form, qualities and pastimes of Krishna. Therefore we should never forget that the Gopis' prem is highest, and we should always desire to try to achieve that seva. The Guru Maharaj says, I am praying that we may all have success or siddhi in our bhajan. Go Premanandi.
যে কোনো দিন আমি তো হিন্দিও বললাম আর কি সব কিছু।